दिन भर तारीख 21 जुलाई दिन शुक्रवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। जन्मदिन के मौके पर गुजरात के नेता शंकर सिंह वाघेला ने कांग्रेस को दिया झटका। पार्टी से 17 साल पुराना साथ तोड़ने का ऐलान किया। कांग्रेस ने कहा,
हमको झटका इसलिए नहीं लग रहा है कि उनका सोच था कि करीबन ज्यादा जो MLA आएंगे, पर आज जब उन्होंने प्रोग्राम जब शुरू किया तो वहाँ पे सिर्फ एक दो MLA जो है उनके अलावा वहाँ पे मौजूद थे।
यरूशलम में इसराइल सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों में झड़प, कई घायल। और विवेचना में बताएंगे इंदिरा गांधी ने किस तरह से दिया था अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की ओर से किए गए अपमान का जवाब।
थ्रू द एंटायर बैंक्वेट उन्होंने आंख बंद करके रखा, एज इफ शी वाज स्लीपिंग।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। गुजरात में विपक्ष के नेता शंकर सिंह वाघेला ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो अपनी ओर से पार्टी को मुक्त करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने अपने 77वें जन्मदिन पर एक रैली में कहा कि पार्टी ने उन्हें निकाल दिया है। उन्होंने कांग्रेस के लिए एक कहावत विनाश काले विपरीत बुद्धि का इस्तेमाल किया। हालांकि कांग्रेस ने उन्हें निकालने की बात से इनकार किया है। शंकर सिंह वाघेला UPA सरकार में कपड़ा मंत्री भी रह चुके हैं। भारत प्रशासित कश्मीर में सेना की फायरिंग में आज एक युवक की मौत हो गई है। फायरिंग की ये घटना बड़गाम जिले की है और इस इलाके में फिलहाल तनाव बना हुआ है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से माजिद जहांगीर।
शुक्रवार दोपहर को जिला बड़गाम के बीरवा इलाके में उस समय 18 वर्ष के युवक तनवीर अहमद की सेना की गोली लगने से मौत हो गई। जब सेना की एक टुकड़ी ने इलाके में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई, तहां पुलिस का कहना था कि सेना की टुकड़ी जब इलाके से गुजर रही थी तो कुछ स्थानीय युवकों ने सेना पर पत्थर मारे और पटाखा फोड़ा, जिसको सेना ने हथगोला समझकर जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई। तनवीर पेशे से एक दर्जी था। हजारों लोगों ने तनवीर का शव लेकर इलाके में मार्च किया।
ये थे श्रीनगर से माजिद जहांगीर। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अमेरिका अपने नागरिकों के उत्तर कोरिया घूमने जाने पर प्रतिबंध लगाना चाहता है। ये खबर उन दो एजेंसियों ने दी है जो उत्तर कोरिया के लिए टूर ऑपरेट करती हैं। चीन आधारित कोरियो टूर्स और यंग पायनियर टूर्स ने कहा है कि अमेरिका ऐसे प्रतिबंध की घोषणा 27 जुलाई को कर सकता है। हालांकि ये प्रतिबंध 30 दिनों के बाद प्रभावी होगा। माना जा रहा है कि डेडलाइन के बाद उत्तर कोरिया की यात्रा करने वाले अमरीकी नागरिकों का पासपोर्ट निरस्त कर दिया जाएगा। पिछले साल उत्तर कोरिया के दौरे पर गए अमरीकी छात्र ओटो वेम्बियर कोमा की हालत में पिछले महीने उत्तर कोरिया से अमरीका लौटे थे, जहां उनकी मौत हो गई थी। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने उत्तर कोरिया से अपने सैन्य वार्ता के प्रस्ताव पर जल्द से जल्द जवाब देने को कहा है। इसी हफ्ते दक्षिण कोरियाई सरकार ने दोनों देशों के बीच असैन्य इलाके में स्थित पान मुन जोम नाम के गांव में बैठक के लिए प्रस्ताव रखा था। उत्तर कोरिया के रक्षा विभाग के प्रवक्ता मून सांग ग्यून ने कहा कि सच्चाई के धरातल पर इस वक्त उत्तर कोरिया से बातचीत संभव नहीं है। उत्तर कोरिया ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, इसलिए आज बातचीत शुरू करना मुश्किल है। कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है कि जल्द सैनिक क्षेत्र में बातचीत शुरू हो, ताकि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सेनाओं के बीच तनाव कम किया जा सके। ये थे मून सांग ग्यून के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। पहली बार चीन अमरीका से चावल आयात करने के लिए तैयार हो गया है। अमरीकी चावल भंडारों के निरीक्षण के बाद चीन के लिए चावल भेजना शुरू कर दिया जाएगा। इसी हफ्ते अमरीका और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर समझौता हुआ है। वैसे चीन चावल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है। चीन ज्यादातर चावल खुद ही उपजाता है, लेकिन अमरीका में चावल का साल भर का जितना उत्पादन होता है उतना चावल चीन में दो हफ्ते के भीतर ही इस्तेमाल कर लिया जाता है। फलस्तीन में इजरायली पुलिस के साथ झड़पों में कई दर्जन फलस्तीनी लोग घायल हो गए हैं। यरूशलम में मुस्लिमों के पवित्र स्थल हरम अल शरीफ को लेकर तनाव के कारण ये झड़पें हुई हैं। यहूदी इस स्थल को टेम्पल माउंट कहते हैं और रिपोर्टों के मुताबिक इसमें एक फलस्तीनी युवक को गोली मारने की भी खबर है। हालांकि किन परिस्थितियों में उसे गोली मारी गई इसकी अभी पुष्टि नहीं की गई है। बांग्लादेश में अखबारों के संपादकों ने सरकार से प्रेस की आज़ादी के लिए खतरा पैदा करने वाले एक विधेयक के हिस्से को वापस लेने की अपील की है। बांग्लादेश के एडिटर्स काउंसिल ने कहा है कि इससे धार्मिक भावनाओं को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तारी आसान कर दी गई है। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर आप सुन रहे हैं, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com, मोबाइल और फेसबुक पर भी लाइव। दिन भर में आज सबसे पहले बात गुजरात की राजनीति की। गुजरात के बड़े नेता शंकर सिंह वाघेला आज जन्मदिन मना रहे हैं। वो 77 साल के हो गए हैं। जन्मदिन के मौके पर वाघेला ने गांधीनगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, अपने समर्थकों को जुटाते हुए शक्ति प्रदर्शन किया और यहाँ उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया जिसकी बीते कुछ दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी। वाघेला ने कांग्रेस से अलग होने की घोषणा कर दी। उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं।
मैं अपने आप कांग्रेस को मेरी ओर से मुक्त करता और गजन लीज की कांग्रेस से बीजेपी में कोई पार्टी की नई कंठी नया ऐसा झंडा अपने गले में नहीं लगाना है। अब क्या करेंगे,
नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देने वाले वाघेला अभी विधायक बने रहेंगे। जैसा कि आपने सुना, वाघेला कह रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी या किसी और राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे। वाघेला ने इस कार्यक्रम में लंबा भाषण दिया और अपने पूरे राजनीतिक सफर को याद किया। उन्होंने कांग्रेस पर एक के बाद एक कई हमले किए। हालांकि उन्होंने खुद को नॉट आउट बताते हुए संकेत दिया कि राजनीति में उनका सफर जारी रहेगा। सुनिए वाघेला ने क्या कहा।
अब तक मैं जो खड़ा हूं, बिल्कुल 77 नॉट आउट।
77वां जन्मदिन है और वो खुद को 77 नॉट आउट बता रहे हैं। जनता को अपना हाई कमान बताने वाले वाघेला की भविष्य की राजनीति को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। वाघेला कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं, इसके संकेत बीते कई दिनों से मिल रहे थे। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबर आने के बाद खटास बढ़ गई। वाघेला गुजरात के बड़े नेता रहे हैं, वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कांग्रेस में आने के बाद वो कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। उनके आज के ऐलान के बाद मैंने गुजरात की राजनीति पर नजर रखने वाले अपने सहयोगी अंकुर जैन से बात की और वाघेला के आज के फैसले के बारे में पूछा।
शंकर सिंह वाघेला जो पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा गुजरात में अपना दबदबा बनाए रखे हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वो किस तरह झुकेंगे, क्योंकि ये उन चंद नेताओं में से हैं। कि ये किसके दोस्त हैं और दुश्मन, ये कहना सही में बड़ा ही मुश्किल है। आप देखें तो इन्होंने अपनी शुरुआत जो है RSS से की थी कॉलेज के दिनों में, फिर जनसंघ से जुड़े और इमरजेंसी के वक्त ये जेल में गए जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और उसके बाद ये बीजेपी में जुड़े, फिर बीजेपी से बलवा करके इन्होंने खुद की पार्टी खड़ी की और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। और आज वो दिन है जब ये वापस अब कांग्रेस छोड़ के अपनी नई पारी शुरू कर रहे हैं। तो ये कहना मुश्किल है, इनको भापना मुश्किल है कि अब ये अपने नए अवतार में, शंकर सिंह वाघेला जिन्हें गुजरात में लोग बापू कहते हैं, ये किस तरफ जाएंगे।
17 साल का इनका जुड़ाव रहा कांग्रेस से और कांग्रेस का ये सबसे बड़ा वहाँ चेहरा थे। चुनाव होने वाले हैं गुजरात में, वाघेला का कांग्रेस से अलग होना कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है।
जिस स्थिति में मौजूदा हालात में कांग्रेस है गुजरात में, उस स्थिति में कोई एक नेता का भी कांग्रेस से निकलना उनके लिए ये काफी सोचने विचारने का समय होगा, क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस जो है अपने कैडर को पिछले 2 दशकों से मजबूत नहीं कर पाई है। आपको ध्यान होगा कि पिछले दशकों से वहाँ बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस सत्ता में नहीं आई है। ऑलरेडी पार्टी वर्कर्स का जहाँ मॉरल डाउन है, वहाँ शंकर सिंह वाघेला जो ट्रेडिशनली कांग्रेस के नेता नहीं है लेकिन कांग्रेस में आके उन्होंने अपना दबदबा बनाए रखा था, उनका पार्टी से निकलना तो कांग्रेस के लिए जरूर चिंता का विषय है।
दूसरी तरफ मैं शंकर सिंह वाघेला की बात करना चाहूंगा जो कह रहे हैं कि 77 नॉट आउट, लेकिन क्या अभी उनमें लंबी पारी खेलने का मादा है, पेट्रोल बाकी है।
शंकर सिंह वाघेला जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे और अपने लास्ट स्पीच में जब वो गुजरात असेंबली में आए थे, सबसे पहले उन्होंने सबको अचंभित किया था जब उन्होंने मोदी की प्रशंसा में कलमे वाचे थे, और जहां वो अक्सर मोदी की टिप्पणी करते देखे गए थे, वहीं अचानक जब उन्होंने अपना प्यार अपने पुराने दोस्त के प्रति जताया, तब सबको ये आकलन था कि शायद अब ये शायद बीजेपी की तरफ झुक जाएंगे। ये अटकलें पिछले 3 साल से लगाई जा रही थी, लेकिन अब जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ा है तो ये बात जरूर है कि शायद वो आने वाले दिनों में बीजेपी में जुड़ सकते हैं। पर ये देखना होगा क्या वो बीजेपी में अकेले जुड़ेंगे, क्या उनके साथ कांग्रेस के और अन्य विधायक आएंगे।
लेकिन आज उन्होंने साफ तौर पर मना किया कि वो किसी दल के साथ नहीं जा रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे।
ये बहुत अर्ली होगा कि अब वो क्या नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि वो राजनीति नहीं छोड़ेंगे, वो राजनीति से जुड़े रहेंगे, तो अब ये देखना होगा क्या वो एक नई पार्टी के तौर पे आते हैं, इसकी उम्मीद कम है, लेकिन लगता है कि शायद अगर वो एक्टिव रोल नहीं करते तो पैसिव रोल जरूर करेंगे, क्योंकि शंकर सिंह वाघेला के जो स्थान है महेंद्र वाघेला, वो काफी एक्टिव है पॉलिटिक्स में वहां पे, तो शायद अगर वो एक्टिवली इन्वॉल्व ना हो तो पैसिवली शायद भारतीय जनता पार्टी को वहां सपोर्ट करे, इस तरह की बैठक लग रही है।
ये थे अंकुर जैन। उधर कांग्रेस का क्या कहना है ये जानने के लिए मैंने गुजरात कांग्रेस के महासचिव लालजी देसाई से थोड़ी देर पहले बात की, और सबसे पहले वाघेला के उस दावे के बारे में पूछा कि कांग्रेस ने उन्हें 24 घंटे पहले ही पार्टी से निकाल दिया था।
एक सबसे पहले बात है कि कांग्रेस ने ना तो उनको कोई नोटिस दिया है, ना तो उनको निकाला है किसी जगह से भी, इवन ना हाईकमांड से, ना गुजरात से, कोई जगह से उनको निकाला नहीं गया, वो उन्होंने अपने आप पार्टी छोड़ा है, सामने से उन्होंने पार्टी छोड़ने का।
कांग्रेस इस कदम को उनके किस तरह से देख रही है, क्या आपके लिए झटका है? गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव के पहले राज्यसभा चुनाव है, कैसे आप देख रहे हैं?
राज्यसभा के जो चुनाव है वो उस अलग प्रकार से होते हैं, तो उसमें किसी भी तरीके से कोई हमको झटका इसलिए नहीं लग रहा है कि उनका सोच था कि करीबन ज्यादा जो एमएलए आएंगे, पर आज जब उन्होंने प्रोग्राम जब शुरू किया तो वहां पे सिर्फ के सिर्फ एक दो एमएलए जो है उनके अलावा वहां पे मौजूद थे, तो किसी भी तरीके से ये कांग्रेस के लिए कोई झटका नहीं है। इनफैक्ट जो इनकी कम ताकत जो है वो अब खुली पड़ गई है।
यानी आप कहना चाहते हैं कि शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस से अलग हुए हैं, कांग्रेस पर इसका कोई असर नहीं है, बल्कि उनकी जो बंद मुट्ठी थी वो खुल गई, उनकी ताकत जाहिर हो गई।
हाँ जी बिल्कुल। एक दूसरी बात तो है कि इवन छोटा सा छोटा कार्यकर भी जाता है तो उसकी एक छोटी मोटी असर जरूर होती है, पर उसके हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो कुल मिलाकर अगर देखें तो वो जो सोच थी और सबको जो पूरे गुजरात में जो इवन मीडिया में और हर जगह पे था कि कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी और इतने लोग का ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और कांग्रेस के जो एमएलएज हैं उन्होंने अपनी पार्टी की डिसिप्लिन को समझते हुए कोई भी एमएलएज वहां उनके स्टेज पर ना गया है, उनके प्रोग्राम में नहीं गया है।
क्या पैचअप की कोई गुंजाइश बाकी है?
नहीं, अभी तो हमको नहीं लगता।
ये थे लालजी देसाई। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। यरूशलम में इसराइल की पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में कई फलिस्तीनी घायल हो गए। पूरे मामले पर जानकारी के लिए मैंने इसराइल में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरिंद्र मिश्र से बात की और पूछा कि विवाद की शुरुआत कैसे हुई।
पिछले शुक्रवार को जो हरम अल शरीफ जिसे मुस्लिम कहते हैं, ये जो पुराने शहर का जो हिस्सा है जहां पर की मस्जिद अलक्सा बना हुआ है और उसको यहूदी जो हैं वो उसे टेंपल माउंट कहते हैं, तो ये जो क्षेत्र है ये दरअसल बड़ा ही यहां पर हमेशा ही तनाव बना रहता है। अगर आप ध्यान दें तो जो दूसरा इंतिफादा हुआ सन 2000 में जो शुरू हुआ सितंबर 2000 में, वो भी यहीं से शुरू हुआ, और पिछले शुक्रवार को वहां पर कुछ फलस्तीनी युवाओं ने इसराइली सिक्योरिटी के दो अफसरों पर हमला कर दिया जिसमें उनकी मौत हो गई, और उसके बाद से जो है यहाँ पर माहौल जो है लगातार बिगड़ता जा रहा है।
आज क्या स्थिति थी वहाँ, आज किस तरह का माहौल था?
आज पुलिस पूरे क्षेत्र की, पूरे इलाके की, मतलब ये जो पुराना शहर है इस पूरे इलाके की नाकाबंदी कर रखी थी, चारों तरफ पुलिस ने वहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति की वो छानबीन कर रहे थे। जिस तरह से मुस्लिम कुछ यहाँ पर धार्मिक नेताओं ने ये अपील की थी कि यहाँ पर हजारों की तादाद में मुस्लिम आज आकर के यहाँ पर इबादत करें, उसके मद्देनजर शहर के बाहर भी काफी जो है चौकसी बरती जा रही थी, और बाहर से बसों में आने वाले जितने मुस्लिम लोग थे उनकी बसों को रोक करके और फिर उनसे वहां पर उनकी छानबीन हो रही थी।
जानकारी दे रहे थे पत्रकार हरेंद्र मिश्र। और अब वक्त है उस कार्यक्रम का जिसका आपको रहता है पूरे हफ्ते इंतजार, यानी विवेचना। जनवरी 2006 में एक थिंक टैंक सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी ने जब एक सर्वेक्षण किया तो पाया कि भारत में महात्मा गांधी के बाद सबसे पहचाने जाने वाला चेहरा इंदिरा गांधी का था। इंदिरा को एक तरफ 1971 में भारत की पाकिस्तान पर विजय का सूत्रधार माना जाता है, वहीं इमरजेंसी लगाने के लिए उनकी हर तरफ आलोचना भी होती है। हाल ही में मशहूर पत्रकार सागरिका घोष की एक किताब प्रकाशित हुई है, इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी के जीवन से संबंधित कई पहलुओं पर रोशनी डाली है। इंदिरा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष में रेहान फजल नजर डाल रहे हैं इस किताब के कुछ दिलचस्प पहलुओं पर।
हमारी असली ताकत जनता में है, हमारी असली ताकत है इस देश को मजबूत बनाने में। तो मेरी बहनों और भाइयों, भारत निवासी एक हो, भारत निवासी हिम्मत रखो, भारत निवासी आगे बढ़ो।
ये आवाज है उस महिला की जिनके बारे में एक बार प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि दुनिया में दो ही लोग ऐसे हुए हैं जो उत्तरी ध्रुव जैसे बियाबान इलाके में भी भीड़ जमा कर सकते थे। एक तो थे पोप और दूसरी थी इंदिरा गांधी। 1967 के चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी का वो रुतबा नहीं था जिसने बाद में उन्हें भारत की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री बनाया। भुवनेश्वर में जैसे ही उन्होंने एक चुनाव सभा में बोलना शुरू किया, भीड़ की तरफ से आया एक पत्थर उनकी नाक पर लगा और वो टूट गई। इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर की लेखिका सागरिका घोष बताती हैं।
इससे पता चलता है कि उनके अंदर कितना फाइटिंग स्पिरिट था, कितना मतलब एक जोश था, एक मतलब लड़ने की कितनी ताकत थी उनके अंदर। उनका नाक टूट गया और खून बहने लगा, पर उसके बावजूद भी उसने बैंडेड लगा करके वो रैलीज करती गई और बोली कि आई एम लाइक बैटमैन। दिस शोज फाइटिंग स्पिरिट। मुझे नहीं लगता कि उनका जो पोता है जो राहुल गांधी जी है, क्या वो ऐसे कर पाएंगे जो उनकी दादी करती थी।
ऐसा नहीं था कि इंदिरा गांधी शुरू से ही इतनी हिम्मती थी। जब वो प्रधानमंत्री चुनी गईं, तो संसद का सामना करते हुए उनकी फूंक सरका करती थी। उस समय मीनू मसानी, नाथ पाई और राम मनोहर लोहिया जैसे दिग्गज सांसद इंदिरा गांधी के बोले एक एक शब्द में नुक्स निकालने के लिए तत्पर रहा करते थे।
मैंने डॉक्टर माथुर को भी कोट किया है, उन्होंने कहा कि जब वो पार्लियामेंट में जाती थी उसके पहले उनका पेट खराब हो जाता था, उनको हेडेक होता था, उनका गला बैठ जाता था, तो शी वाज वेरी नर्वस। और उस टाइम के जो पार्लियामेंटेरियन थे वो बहुत ही एक्सपर्ट और अच्छे बोलने वाले पार्लियामेंटेरियन थे, वो तो मतलब एकदम इंदिरा गांधी को फिनिश कर देते थे पार्लियामेंट के अंदर। और उसी तौर पर लोहिया जी ने कहा कि भाई ये तो कुछ बोल नहीं पा रही है, ये तो गूंगी गुड़िया है। क्योंकि जब वो उनके पास एक पेपर था, ये भी मेरे फादर ने मुझे बताया, उन्होंने इसको देखा कि वो जब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी और पीछे जो सिविल सर्वेंट्स बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि वो जब स्पीच पढ़ रही थी उसके हाथ में जो कागज़ था वो ऐसे 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 कांप रहा था, क्योंकि शी वाज सो नर्वस। पर उसके बाद आफ्टर हर विक्ट्री ऑफ 1967 में देखिए ये सारे हार गए थे, जो सारे जो सिंडिकेट के जो बड़े बड़े नेता जैसे कामराज, अतुल्य घोष, एस के पाटिल, तो 67 के बाद जब ये बड़े नेता जो सिंडिकेट के नेता हार गए और वो जीत गई, तो उस टाइम में वो जब आई पार्लियामेंट में तो वो चुनकर आई, शी वाज एन इलेक्टेड लीडर एंड दैट गेव हर अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस।
1971 के युद्ध से पहले जब इंदिरा गांधी अमेरिका गईं, तो वहां के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन उनसे बहुत धृष्टता से पेश आए। अमरीकी राजनयिक गैरी बॉस अपनी किताब द ब्लड टेलीग्राम में लिखते हैं, निक्सन ने बदतमीजी की सभी हदें पार कर दी जब उन्होंने इंदिरा गांधी को मिलने के लिए 45 मिनटों तक इंतजार करवाया।
निक्सन इंडियंस को हेट करते थे, ही सेड इंडियंस आर रिपल्सिव, दे आर डिसीटफुल। उन्होंने इंदिरा गांधी को बोला, बाद में किसिंजर का जो टेप्स निकले हैं उनसे पता चला है कि उन्होंने इंदिरा गांधी के बारे में बोला कि शी इज़ अ विच, उन्होंने कहा शी इज़ अ बिच, उनको 45 मिनट बैठा के रखा। तो इन सारे इंसल्ट बर्दाश्त करने के बाद इंदिरा गांधी ने जिस तरह से निक्सन को एक पब्लिकली स्नब किया, ये मुझे लगा कि इज विंटेज इंदिरा गांधी। क्योंकि एक पूरा स्टेट बैंक्वेट में जो सारे मतलब बड़े बड़े लोग आए थे, इट वॉज अ VIP बैंक्वेट और वो निक्सन के नेक्स्ट टू बैठी थी, और थ्रू द एंटायर बैंक्वेट उन्होंने आंख बंद करके रखा एज इफ शी वॉज स्लीपिंग। ये निक्सन के लिए बड़ा एक कन्फ्यूजन की बात हो गई कि भाई ये क्या हो रहा है, ये आँखें क्यों बंद करके बैठी है। तो वो कोशिश कर रहे थे कि प्रश्न पूछे और यू नो ही ट्राई टू मेक कॉन्वर्सेशन, बट शी केप्ट हर आईज कम्प्लीटली क्लोज टू द बैंक्वेट। तो उसके बाद उनके एक ऑफिसर मोनी मल्होत्रा, मैंने कोट किया है उनको, उन्होंने पूछा कि भाई आपने ऐसा आँख बंद करके क्यों बैठी है आप पूरा बैंक्वेट में, तो इंदिरा गांधी ने बड़ा कैजुअली कहा कि नहीं मुझे तो बहुत हेडेक था इसीलिए मैंने ऐसा किया। पर उन्होंने एक्चुअली बहुत ज़बरदस्त तरीके से निक्सन को उस डिनर में स्नब किया।
1972 में जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फकार अली भुट्टो बातचीत के लिए शिमला आ रहे थे, तो इंदिरा गांधी ने खुद जाकर हिमाचल भवन का निरीक्षण किया जहां भुट्टो ठहरने वाले थे। उन्हें वहां का इंतजाम पसंद नहीं आया।
इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि इतना बड़ा वॉर के बाद भुट्टो आ रहे थे फॉर अ पीस समिट, और इंदिरा गांधी जब वो हिमाचल भवन में गई तब द फर्स्ट थिंग शी डिड वॉज रीडेकोरेट द रूम। तो उन्होंने पर्दे बदले, उन्होंने बेड बदला, उन्होंने राष्ट्रपति भवन को चिट्ठी लिखी कि भाई आप अपना स्टेशनरी भेजिए, और अब कारपेट वगैरह सब बदला, और जो वहाँ के जो स्टाफ थे जो देख रहे थे इंदिरा गांधी किस तरह से खुद बेड को बना रही थी और पर्दे निकाल रही थी और चेंज कर रही थी, तो उन्होंने उस टाइम एक कमेंट किया कि प्राइम मिनिस्टर के स्टैंडर्ड लीडर तो एकदम इंटरनेशनल हैं। तो उषा भगत जो उसके साथ थी, जो उनकी सोशल सेक्रेटरी थी, उन्होंने लिखा है अपने बुक में जो मैंने कोट किया कि आई वंडर इफ भुट्टो रियलाइज कि कितना एफर्ट किया इंदिरा गांधी ने उनका कमरा ठीक करने के लिए।
इंदिरा गांधी का दिन सुबह 6 बजे शुरू होता था जब वो आधे घंटे तक योग किया करती थी। वो हमेशा ठंडे पानी से नहाती थी, यहाँ तक कि चिलचिलाते जाड़े में भी। इंदिरा गांधी के निजी चिकित्सक रहे डॉक्टर केपी माथुर बताते हैं।
भाई ऐसा है कि बैठती तो लेती नहीं थी, मैं तो ये कही कि उस घर में मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जवाहरलाल जी से लेकर कोई भी बैटरी नहीं लेता था। वो तो सीधा ब्रेकफास्ट होता था उनका, 8:30 बजे करीब ब्रेकफास्ट होता था उनका, अपने 1 या 2 टोस्ट, थोड़ा सा उन पर मक्खन लगा होता था, थोड़ा सा नाम के वास्ते 1 हाफ बॉइल्ड एग और जो मौसम के फल हों, ज्यादातर सेव हुआ करता था, और 1 मिल्की कॉफी, ये उनका ब्रेकफास्ट था। वो वेजिटेरियन ज्यादा थी तो उनका लंच भी ऐसे ही सादा, जैसा हम और आप खाते होंगे, रोटी दाल एक तरकारी सूखी दही, डिनर में भी वही रहता था, लेकिन वो ज्यादा नॉन वेज बहुत पसंद नहीं करती थी, लेकिन हाँ घर में भी बनता था खाती थी, कभी कभी बाहर से भी आता था, और खासकर रमजान के दिनों में मुस्लिम दोस्त जो थे वो अपने घर से भेज दिया करते थे, सेवई भेजी, बिरयानी भेजी, सीख कबाब भेजिए वगैरह वगैरह। एक उनके किचन में जो चीज बनती थी भिंडी, कच्ची भिंडी को लेकर के थोड़ा बेसन में लपेट के और थोड़ा खास मसाला होता था वो बना देता था, अब वो फ्राई हो जाती है, थोड़ा कुरकुरी हो जाती है, मुझे वो बहुत पसंद थी। एक दिन देखा कुरकुरी भिंडी वहाँ पर है, तो मैंने कहा कि साहब मैं कुरकुरी भिंडी खाना चाहूँगा। अरे डॉक्टर अगले कुरकुरी भिंडी लाओ, उन्होंने कुक को फौरन कहा। कुक अंदर तो गया लेकिन बाहर निकल के आया, उसने हाथ फैला दिया, खत्म हो गई सारी प्लेट अपनी उठा के और मेरे उसमें उन्होंने डाल दी। तो मैंने कहा साहब ये तो बड़ा अनफेयर है, मैं फिर किसी दिन खा लूँगा, नहीं अभी लीजिए अभी लीजिए, लेकिन डाल लीजिए, शी वाज इंसिस्टेंट।
सागरिका घोष एक और किस्सा सुनाती हैं, जब इंदिरा गांधी पश्चिम बंगाल के एक सर्किट हाउस में ठहरी थी और उनके पिता उस जिले के कलेक्टर हुआ करते थे।
उन्होंने ये स्टोरी मुझे बताई कि उन्होंने जब वो आई और वो फिर बाथरूम यूज किया और बाथरूम से निकली और मेरे फादर की ओर ऐसे इशारा करके उन्होंने कहा कि मिस्टर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बहुत ही अच्छा काम किया है आपने, आपने मेरे लिए नया तौलिया रखा है, पर ये बात आप ज़रूर इस पे ध्यान दीजिए कि नए तौलिया जब लगते हैं बाथरूम के अंदर तो उनको एक बार आप पहले धो लीजिए, क्योंकि बिना धोए जो अगर तौलिया लगेंगे वो सुखाते नहीं है, दे डोंट ड्राई, सो यू हैव टू वॉश देम वंस।
इंदिरा गांधी के पास संभवतः भारत में हैंडलूम साड़ियों का सबसे बेहतरीन संग्रह था। वो कोई भी जेवर नहीं पहनती थी सिवाय रुद्राक्ष की एक माला की।
शी वॉज वेरी कॉन्शियस ऑफ अपीयरेंस, परफेक्टली चोजन साड़ीज, और स्किन को बहुत केयर करती थी और बाल ठीक तरह से रखती थी। शी वॉज वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ वेट, वेट गेन ना हो जाए, और यूज़ टू डू योगा और साड़ीज, तो शी वॉज पैशनेट अबाउट साड़ीज। जिस तरह से एक बार मैंने लिखा भी है कि किस तरह से उन्होंने एक बार साड़ी को आइडेंटिफाई किया, क्राउड में एक लड़की खड़ी थी जो मेरी आंट थी एक्चुअली, जो मेरे फादर को विजिट कर रही थी उस टाइम, एंड शी वॉज स्टैंडिंग इन अ रैली और मिसेस गांधी ने उनको देखा जीप से, और इंटेलिजेंस ऑफिसर जो उनके पीछे बैठे हुए थे उनको पूछा कि देखो ये क्या साड़ी पहनी है बताइए, तो वो इंटेलिजेंस ऑफिसर को तो पता नहीं था, उन्होंने कहा मैडम ये कोई सिल्क साड़ी होगा, तो उन्होंने कहा ये सिल्क साड़ी नहीं है, इट्स अ कोयम्बटोर हैंडलूम, एंड इट वॉज अ कोयम्बटोर हैंडलूम, और जेंट्स रिस्ट वॉच, शॉर्ट हेयर, मे बी समटाइम्स इयर रिंग्स एंड अ नेकलेस और समथिंग, बट हाई हील्स।
इंदिरा गांधी को अपने देश से बहुत प्यार था। एक बार फेस्टिवल ऑफ इंडिया समारोह के दौरान जब जनगण मन बज रहा था तो पुपुल जयकर की नजर उनकी आंखों पर गई, उनमें आंसू थे। एक बार एक जर्मन छात्र ने इंदिरा से पूछा था कि आपका सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है, इंदिरा ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया था, टैगोर का एकला चलो रे।
जोदि सबाई थाके मुख फिराए सबाई करे भय, तबे पराण खुले ओ तुई मुख फुटे तोर मनेर कथा एकला बोलो रे, ओ तुई मुख फुटे तोर मनेर कथा एकला बोलो रे, जोदि तोर डाक शुने केउ ना।
इंदिरा गांधी ने फिरोज गांधी से अपनी पसंद से शादी की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही इस शादी में दरार पड़नी शुरू हो गई थी। इंदिरा जवाहरलाल नेहरू के साथ रहा करती थी जबकि फिरोज गांधी को 3 मूर्ति भवन में रहना कतई पसंद नहीं था। वो दिल फेंक भी थे और कई महिलाओं से उनके संबंध थे। फिरोज गांधी के सबसे करीबी दोस्त इंदर मल्होत्रा ने एक बार मुझे बताया था,
फिरोज मेरे बहुत अजीज दोस्त थे और वो कभी जिक्र भी कर देते थे कुछ उनके यहाँ जो लेडीज आती थी वो कुछ हमको भी जानती थी, हमसे भी बात करती थी। लेकिन सबसे ज्यादा हम्मी नाम की एक बहुत खूबसूरत औरत उस जमाने में, अब वो लखनऊ में थी, उनके वालिद जो थे वो मिनिस्टर थे कांग्रेस की सरकार में यूपी में, और इंदिरा पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखने के लिए वे प्राइम मिनिस्टर हाउस में यहाँ दिल्ली में आ गई बच्चों को लेके। तो वहां से फिरोज का रोमांस शुरू हुआ और बात आगे बढ़ती गई। फिरोज हैड ए काइंड ऑफ व्हाट वी कॉल्ड अ ग्लैड आई। एक रोज इमरजेंसी से जरा कुछ पहले, जब काफी हिजान था मुल्क में, किसी वजह से हमी किसी वजह से वो आई प्राइम मिनिस्टर के हाउस, जब इंदिरा प्राइम मिनिस्टर थी, और दफ्तर में कुछ अर्जी दे के बाहर जा रही थी, और देवकांत बरुआ उस वक्त इंदिरा जी को मिल रहा था, तो उन्होंने बाहर देखा तो वो लेडी जा रही थी। देवकांत बरुआ ने मुझको ये बताया उसी रोज शाम को, मैं खाना उनके साथ खा रहा था, जब उन्होंने देखा कि वो औरत, उसने कहा मुझको कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि जरा बाहर नजर डालो, इस औरत के लिए फिरोज ने सारी जिंदगी हमारी खराब कर दी।
स्वयं इंदिरा गांधी के प्रेम संबंधों के बारे में भी अफवाहों की कमी नहीं है। नेहरू के सहायक रहे एमओ मथाई ने अपनी किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ नेहरू एज में शी नाम से एक अध्याय लिखा था, लेकिन उसे छापा नहीं गया था। लेकिन दूसरी ओर सागरिका घोष उनकी जीवनीकार पुपुल जयकर के हवाले से कहती हैं कि इंदिरा गांधी का सेक्सुअल पक्ष बहुत ज्यादा विकसित नहीं था।
उनका सेक्सुअल साइड अंडर डेवलप था। वो खुद कहती थी कि इनसाइड मी देयर इज अ लैक ऑफ सेक्स। मैंने कोट भी किया है इसको, उन्होंने पुपुल जयकर को बोला था। देखिए उनकी जो जिंदगी थी, इट वाज अबाउट पॉलिटिक्स, इट वाज अबाउट पावर, इट वाज अबाउट परस्यूइंग पावर। इस जिंदगी में रोमांटिक रिलेशनशिप्स या रिलेशनशिप्स विद मैन आई थिंक टुक अ बैक सीट। और हाँ, बहुत सारे रूमर्स थे, देयर वाज अ रूमर कि दिनेश सिंह के साथ उनका रोमांस था, या धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के साथ था, या विद मथाई हिमसेल्फ, पर शी वॉज मोर लाइक अ मैन, यू नो, इट वॉज द मैन इन हर पर्सनैलिटी वॉज वेरी डोमिनेंट। और उन्होंने कहा भी कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं वुमन नहीं हूँ, शायद मैं टॉम बॉय हूँ, क्योंकि वो शुरू से बचपन से शी वॉज अ टॉम बॉय एंड हर फादर यूज्ड टू कॉल हर इंदू बॉय। शी वॉज नॉट रियली अ वुमन इन दैट सेंस, यू नो। तो वो खुद बहुत बार उन्होंने पुपुल जयकर को भी कन्फेस किया कि आई एम नॉट अ वुमन इन द सेंस ऑफ फेमिनिन वाइल्स और सिडक्शन, और ये सब मेरे से नहीं होता है।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
विवेचना की ये कड़ी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और हम आपको बता दें कि जापान की फर्स्ट लेडी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं की, ऐसा क्यों? अगर आप जानना चाहते हैं तो रुक कर सकते हैं bbchindi.com का। वक्त खेल अपडेट का है, लेकिन पहले बता देते हैं कि कल इंडिया बोल में किस विषय पर चर्चा होगी।
बीबीसी इंडिया बोल।
महिला विश्व कप में भारतीय टीम का दमदार प्रदर्शन, ऑस्ट्रेलिया को हराकर बनाई फाइनल में जगह। अब खिताब के लिए इंग्लैंड से मुकाबला। रविवार को होने वाले फाइनल के पहले भारतीय कप्तान मिताली राज ने इंग्लैंड को आगाह किया है कि वो आसान मैच की उम्मीद न करें। क्या भारतीय महिला क्रिकेट टीम में विश्व कप जीत कर इतिहास रचने का दम है? अपनी राय जाहिर कीजिए बीबीसी इंडिया बोल में। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 22 जुलाई शाम 7:30 बजे मुफ्त टेलीफोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
खेल समाचारों के साथ मौजूद हैं इंदु पांडे। तो इंदु जी, क्या भारतीय टीम में दम है फाइनल जीतने का?
बिल्कुल वात्सल्य, दावा तो उनका यही है। और महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 36 रनों से हराकर फाइनल में जगह पक्की भी कर ली है। रविवार को इंग्लैंड के लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में होने वाले फाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। भारतीय क्रिकेट टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए 7 मैच खेलने पड़े, और जिसमें कि उसने 5 मैच जीते और 2 हारे। भारतीय टीम के यहां तक के सफर में हर बार किसी न किसी खिलाड़ी ने अपने चमकदार प्रदर्शन को जाहिर किया।
बहुत शुक्रिया इंदु जी। वक्त विदा लेने का है, लेकिन मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं हरिता कांडपाल से।
बीबीसी समाचार। गुजरात में विपक्ष के नेता शंकर सिंह वाघेला ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में भी वो शामिल नहीं होने वाले हैं। भारत प्रशासित कश्मीर के बड़गाम जिले में सेना की फायरिंग में आज एक युवक की मौत हो गई है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने उत्तर कोरिया से अपने सैन्य वार्ता के प्रस्ताव पर जल्द से जल्द जवाब देने को कहा है। अमरीका अपने नागरिकों के उत्तर कोरिया घूमने जाने पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। चीन आधारित दो टूर ऑपरेटरों ने इस तरह की जानकारी दी है। पहली बार चीन अमरीका से चावल आयात करने के लिए तैयार हो गया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे अजित सारथी। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।